والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المصدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته إلى العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. سورہ فجر، جسے معصوم امام نے سورہ امام حسین بھی کہا، اس کی جو آیتیں کل تلاوت کی گئیں، ابھی انہی آیتوں کے کانٹیکسٹ میں بہت ساری باتیں باقی رہ گئی ہیں، لیکن ان آیتوں سے بالکل پہلے کی جو آیتیں بالکل اس سے ملی ہوئی، آج میں نے ان کی ان آیتوں کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا، کیونکہ اس کے اندر بہت ہی اہم ایک جرنلائز قسم کا پیغام ہے. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، پوری دنیا کی ہسٹری آدم سے لے کے آج تک قرآن سمرائز کر کے بتا رہا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عاد، ارم ذات العماد، جس نے ایسی جنت بنائی کہ آج تک ایسی جنت نہیں بنائی گئی. شداد، ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک جنت بنا رہا ہے، اور ایسی خوبصورت وہ جنت تھی کہ قرآن اس کو پریز کر رہا. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس کی مثل، اس کی مانند، اس طرح کی جنت آج تک نہیں بنائی گئی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور جا کے دیکھو قوم سمود کو، جو پہاڑوں کے اندر انہوں نے شہر بنائے ہیں، آج کی ٹیکنالوجی میں بھی کتنا مشکل ہے، اور یہ بات 1400 سال پہلے کی نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ سے پہلے کی قوم تھی، یہ بات 4000 سال پہلے کی نہیں ہے. 4000 سال پہلے ابراہیم، وہ تو حضرت ابراہیم سے پہلے کی بھی قوم ہے. جاب الصخر بالواد، جنہوں نے پہاڑیوں میں مکان بنائے. اگر آپ مدینے سے تبوک کی جانب چلیں اور تبوک سے آگے سیریا، تو راستے میں قوم سمود کے وہ پہاڑ آتے ہیں جو آج بھی دنیا کے 7 wonders of the world ہیں جیوگرافیکلی، دیکھنے کی چیز. قرآن کہہ رہا وَفِرَوْنَ ذِلْ اَوْتَاد، اور طاقت کے اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے، اپنی مائٹ اور اسٹرینتھ کے اعتبار سے فرعون. لیکن اب یہ جو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، بالکل الگ، بہت اہم، لیکن آج نہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں دی شداد کو، اللہ نے ایسی حکومت دی کہ وہ جنت بنا سکا. غریب آدمی، فقیر آدمی، وہ کہاں سے جنت بنائے گا؟ فرعون کو اللہ نے اتنی طاقت دی، تو انہیں تو اور ہمبل ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن قرآن کہہ رہا، دیکھیے ابھی میں بیچ میں ایک بات کہہ دوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی ایکسپیکٹیشن، یہ بالکل مجلس سے ہٹ کر ہے، نہیں ہوتی، ہونا بھی نہیں چاہیے. بچے ہیں، اب ہم ان سے یہ ایکسپیکٹیشن کریں کہ بڑے سوبر بن کر مجلس میں بیٹھیں گے، نہیں، بچہ بچہ ہی اچھا لگتا. علامہ علی کا بیٹا بھی در سے خارج دیتے ہوئے چڑیوں سے کھیلنے لگا. اب وہ بچے جو ہیں نا، وہ کھیلتے ہی وہ اچھے لگتے ہیں، औरतें बातें करते हुए ही अच्छी लगती हैं। तो वो जो मर्दाना मजमा है वो इसकी परवाह ना करे, मुड़ मुड़ के ना देखें कि पार्टीशन के पीछे क्या हो रहा है, वो बातें करे वही अच्छा लगता। तो बात हो रही थी कि इन्हें और हम्बल होना चाहिए, कौम समूद अल्लाह ने तुम्हें ऐसी टेक्नोलॉजी दी है, फिरौन अल्लाह ने तुम्हें इतनी ताकत दी है, मगर क्या हुआ कि जैसे जैसे अल्लाह नेमत और दौलत देता है आदमी हम्बल नहीं होता और एरोगेंट हो जाता, घुमंड गुरूर तकबुर और खुदा की नाफरमानी। कुरान ने कहा कि अल्लज़ीन तगौ फिल बिलाद, हम इनको नेमतें दे रहे हैं और ये जमीन और आसमान के अंदर तुगयान सरकशी नाफरमानी डिसऑबिडेंस ऑफ अल्लाह कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकला, फअक्सरु फीहल फसाद, इन्होंने जमीन में फसाद बर्पा कर दिया। लेकिन कब तक, कितने दिन, कितने साल, कितनी सेंचुरी, इन रब्बका लबिल मिरसाद, एक दिन है कि जब अल्लाह इनमें से हर एक को पनिश करेगा उसके इस गुनाह के नतीजे। अल्लज़ीन तगौ फिल बिलाद फअक्सरु फीहल फसाद इन रब्बका लबिल मिरसाद, रब्बका लबिल मिरसाद, फम इंसान इजाम अबतला हो रब हु बक्रम हु व नम हु फयकूल रब्बी अकरमन व अम्मा इजाम अबतला हो फकदर अलैह रिज़्क हु फयकूल रब्बी अहानन कल्ल बल ला तुकरिमून अल यतीम व ला तुहाज़ून अला ताम अल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अक्लन लम्मा। ये आयतें पूरा एक सिलसिला। अब यहां पे फिरौन, शद्दाद, कौम समूद, उनका तस्किरा करने के बाद अल्लाह ने कहा मैं मिरसाद पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वापस तो यहीं मिरसाद पे आना है ना, फिरौन तुम दुनिया में हमेशा तो नहीं रहोगे ना, समूद तुम दुनिया में हमेशा तो नहीं रहोगे ना, ये दौलत, ये पावर, इस पे गुरूर करने वाले, रिजल्ट तो इनका भी वही कब्रिस्तान और कब्र है और मिरसाद। अब मिरसाद क्या, मुहद्दिस कुम्मी ने यानी शेख अब्बास कुम्मी इस रिवायत को नकल किया है कि सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि मिरसाद, छठे इमाम की हदीस के मिरसाद वो लास्ट चेकिंग पॉइंट है या लास्ट चेक पोस्ट है पुले सिरात की। पुले सिरात एक ऐसा ब्रिज है जिसके नीचे जहन्नम है, जिसके एक एंड पर, फर्स्ट एंड पर कयामत का मैदान है जहां हरेक का हिसाब किताब हो रहा, और दूसरे एंड पर जन्नत का दरवाजा। ये कयामत से जन्नत ले जाने के लिए, कयामत से मतलब मैदान कयामत, वहां से जन्नत ले जाने का एक ही रास्ता, एक ही रास्ता है जन्नत जाने का बस, और उसका नाम पुले सिरात है जिसके बिल्कुल नीचे जहन्नम, जरा सा भी आपके पैर स्लिप हुए तो सीधा जहन्नम। और ये रास्ता, ये जो ब्रिज अल्लाह ने बनाया है, बहुत हैवी ट्रैफिक है, सारे लोग इस पे से गुजरने की कोशिश करेंगे लेकिन है कितना कंजेस्टेड, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म। जो मेरी मजलिस कैसेट में सुनते हैं आज उनको सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ये कब्र वाले बापू सादिक हसन ही मजलिस पढ़ रहे हैं। पुले सिरात, अभी तक तो लोग परेशान थे कि ये कौन आ गए हैं, तो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म। जन्नत बहुत खूबसूरत जगह है, उसका रास्ता बहुत खराब। एक जानवर है, एक परिंदा है, मोर, ताऊस, पीकॉक, कहा जाता है कि वो खुद बड़ा खूबसूरत है, उसके पैर बड़े बदसूरत होते हैं। खैर आज तो वक्त नहीं है कि मैं फजूल बातें करूं, जन्नत का रास्ता। अब रिवायत में यह है कि जन्नत का रास्ता पुले सिरात, लेकिन पुले सिरात पे हरेक को परमिशन नहीं, या आपके यहां भी कोई टोल वोल टैक्स वगैरह होते होंगे, जैसे ही आपने उस रास्ते पे कदम रखा रोक लिया गया कि पहले पेमेंट करो फिर आगे जाओ। पुले सिरात पर 7 जगह चेक पोस्ट है, यह पूरा एक अशरा है मेरा, बल्कि माह रमजान में तो 25 मजलिसें इसी पर पड़ी पुले सिरात। तो वो हदीस को आखिरी जुमले को बताना है ताकि वो कल का टॉपिक आज के टॉपिक से मिलकर आगे बढ़े। कहा पुले सिरात, अच्छा पुले सिरात का इतना, अब अजाब तो छोड़िए, खाली उसका डिस्क्रिप्शन, बाल से ज्यादा बारीक, थिनर देन हेयर, और आंख से ज्यादा गर्म, और तलवार की धार यानी वो जो एज होती है सोर्ट की उससे भी ज्यादा तेज, इस पर जाएगा कौन? ये तो बहुत ही मशहूर हजरत अबू बकर की हदीस है, ये इब्ने हजर मक्की ने सवाए उल मुहरका में भी लिखी, ला यजूज़ु अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहू अलीउन अलजवाब, बोले सिरात पे वही कदम रखेगा जिसे अली ने लिख के दिया हो कि ये मेरा शिया। बोले सिरात कतब लहू अलीउन अलजवाब, आज भी अरब दुनिया में पासपोर्ट को जवाब कहते हैं, अली ने इसको लिख के दिया हो, अली ने इसका वीजा लगाया, सिर्फ हो जाएगा पुलिस से रात पर। तो जहां एक जानिब ये पता चला कि दुनिया में जालिम जो भी कर ले कयामत और जन्नत पे अली की हुक्मरानी है, तो वहां दूसरी जानिब एक और बात भी तो पता चली ना कि पुलिस से रात का जितना अजाब है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें अली ने अपना शिया डिक्लेयर कर दिया, खाली जबान से नहीं कहा, कतबा लिख के दिया है रिटर्न में, हर शिया के हाथ में अली की जानिब से ये जवाब, ये पासपोर्ट, ये परमिशन है, अली ने लिख के दिया ये मेरा शिया है। यानी गदीर का मानने वाला पुले सिरात का अजाब उसी के लिए है जो अली को नहीं मानते, या अली जिनको नहीं मानते वो तो पुले सिरात पे कदम भी नहीं रखेंगे उससे पहले ही जहन्नम में। तो खास शिया ने हैदर कर्रार और गदीर का ऐलान मानने वाले अली के विलायती मोमिन पुले सिरात उनके लिए, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज। अब इमाम फरमाते हैं सात चेक पॉइंट, पहले पे तो पूछा जाएगा तुम्हें परमिशन है कि नहीं है, दिखाओ वो अली की जानिब से लिखी हुई तहरीर। उसके बाद फिर हर जगह अलग अलग सवाल। सेवेंथ चेक पोस्ट का नाम है मिरसाद। मिरसाद ये हदीस का जुमला है, इन रब्बका लबिल मिरसाद, सूरह फजर में जो लफ्ज आया मिरसाद का, कहा कि ये मिरसाद जो है, मिरसाद ये पुलिस सिरात की आखिरी चेक पोस्ट है। अच्छा आखिरी चेक पोस्ट बहुत अहम होती, सामने जन्नत नजर आ रही, सामने जन्नत का दरवाजा नजर आ रहा, सामने जन्नत की नेमतें नजर आ रही, बिल्कुल आप करीब पहुंच गए और रोक लिया गया। हम पाकिस्तान से चले यहां आने के लिए हमें कराची एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, आप नहीं जा सकते। अफसोस तो होगा, एक सेटबैक तो होगा, लेकिन फिर भी आसान है। दुबई पहुंचे ट्रांजिट में, वहां दोबारा चेकिंग होती, नहीं जा सकते। चले वहां से भी निकला है, जब यहां एंटर होके एयरपोर्ट में कदम रखा, बाहर मोमिन खड़ा है मुझे लेने के लिए और वहां रोक लिया गया, ये ज्यादा अफसोस होता है आदमी को। तो पहले चेक पॉइंट, दूसरे चेक पॉइंट, चौथे चेक पॉइंट पे रोके, वो भी बहुत बड़ी बात, लास्ट के जहां से जन्नत का दरवाजा नजर आ रहा रोक लिया गया। क्योंकि हर जगह पे एक एक सवाल है, मिरसात पे क्या सवाल, मिरसात पे ये सवाल है कि किसी मोमिन का कोई हक, और खास तौर पर उसका कोई माली हक, पैसे वाला, वो तो तुम्हारी गर्दन पे नहीं। अल्लाह ने एक अनाउंसमेंट किया कि जिस आदमी का हक दूसरे ने मारा, अगर वो गैर मोमिन है तो कयामत से ही सजा शुरू होगी, अगर जालिम मोमिन है तो जन्नत के दरवाजे पे उसको रोक दिया जाएगा, कहा जाएगा पहले इसको राजी करो, पहले इसका हक इसको दो। वो है मिरसाद, इन्ना रब्बका लमिरसाद, तुम्हारा रब तुम्हारा इंतजार कर रहा। कौन लोग? जो मोमिन का हक मार लेते हैं, जहां से माल हराम की बात शुरू हो जाती है। लेकिन जो इतना अहम मसला है कि एक मोमिन मौला से मिलने के लिए शहर कूफा में पहुंचा जब अली के खिलाफत जाहिरी थी, एक मोमिन मौला से मुलाकात के लिए गया, आधी रात का वक्त है, मौला के पास पहुंचा, जैसे ही एंटर हुआ देखा मौला एक लैंप चिराग उसकी रोशनी में बैतुल माल के अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, हर चीज अली के यहां बहुत सिस्टमेटिक थी। मौला सलाम, आपसे मिलने आया हूं। अली ने कहा कि कोई मुसलमानों का मैटर है कि अपने खाली अपने दिल से आए मन से? कहा नहीं मौला, खाली जियारत के लिए आया हूं। मौला ने वो लैंप ऑफ कर दी, चिराग गुल कर दी। मौला ये क्या? कहा कि ये बैतुल माल का चिराग है, ये बैतुल माल का लैंप है, तुम एक इंडिविजुअल मसले पे बात करने आए हो, तो ये मैं नहीं जला सकता हूं, ये जो इतना इसमें फ्यूल कंज्यूम होगा ये सारे मुसलमानों का हक है, एक पे इस्तेमाल नहीं होगा। अंधेरे में बात करो, डार्कनेस में बात करो, लेकिन ये चिराग नहीं। चिराग वो भी चंद सेंट की बिजली खर्च होती होगी, यहां तो पूरा पूरा मसलन पावर हाउस हो, पूरे पूरे जो है गैस के कुएं लोग गायब कर दें और पता ना चले। मोमिन का स्टमक बड़ा ताकतवर हो जाता है कभी कभी, हर मोमिन की बात नहीं कर रहा हूं। मौला कह रहे हैं कि हक्कुन्नास और मोमिन का हक कयामत में एक एक पैसे का हिसाब देना। वही शेख अब्बास कुम्मी जिनका नाम मैंने पुलिस सिरात की डिटेल में लिया, आखिर अब डिटेल तो क्या बताई, तो वही शेख कुम्मी लिखते हैं नजब के एक बहुत बड़े आलिम का वाकया, नाम लेना मुनासिब नहीं है इसलिए कि एक तो हमारी आज की जो इस वक्त सिचुएशन है शियत की, वैसे ही लोग उलमा के अगेंस्ट हो रहे हैं मराजे के, फिर प्रोपेगेंडा इतना किया जा रहा है कि और ज्यादा अगेंस्ट हो रहे हैं, और फिर उसमें अगर एक आध ऐसा वाकया आ जाए, भाई मर्जे को हम गैबत इमाम में सुप्रीम अथॉरिटी समझते हैं लेकिन मासूम नहीं समझते, मासूम नहीं है वो। अच्छा स्टेटस तो इनका इतना हाई है कि मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, हमारी कौम जो शुरू में कहा ना कि अल्लाह जब कोई नेमत देता है तो हम्बल होना चाहिए, हम एरोगेंट हो जाते हैं, हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, हम घुमंडी हो जाते हैं। हमारी कौम को अल्लाह ने ऐसे नायब इमाम दिए हैं कि दूसरी कौमों के इमाम ऐसे नहीं जैसा नायब इमाम हमको मिला। बजाय इसके कि इस नेमत पर शुक्र खुदा अंजाम दें, रोजाना एक नया एलिगेशन, रोजाना एक नई तोहमत, रोजाना एक नया इल्जाम मराजे के खिलाफ। ये वो अजीम शख्सियतें हैं कि मैंने अभी एक जुमला कहा कि ये मासूम नहीं। अब ये जुमला भी जरा समझ लीजिए, बात आगे बढ़ेगी कि ये ऐसे मर्जे बनते कैसे हैं, मासूम नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह करते हैं। भाई हजरत अब्बास 14 मासूमीन में नहीं है नऊज़ु बिल्लाह, क्या हम ये समझते हैं वो गुनाहगार थे नऊज़ु बिल्लाह? जनाब ज़ैनब कुबरा 14 में नहीं है तो क्या नऊज़ु बिल्लाह गुनाहगार है? जनाब अली अकबर 14 में नहीं है तो क्या नऊज़ु बिल्लाह? ये जुमला कहना उनकी शान में गुस्ताखी। तो 14 मासूम है लेकिन मासूम का सिर्फ ये मीनिंग नहीं है कि वो गुनाह ना करता, उसमें कुछ और भी चीजें हैं। ये जनाब अब्बास, जनाब ज़ैनब, जनाब अली अकबर मासूम है कौम, इनके यहां भी गुनाह नहीं, बल्कि इसके बाद मराजे के पास आइए तो एक हिस्ट्री में मौजूद एक चीज है जिसकी डिटेल का आज मौका नहीं, वो ये है कि ये हजरत अब्बास और जनाब ज़ैनब की बात तो छोड़िए, ये मराजे एक बहुत ही मशहूर फैमिली है हमारे यहां, जहां दो भाई ऐसे गुजरे हैं, एक दोनों अपनी जगह पर इतने ग्रेट, इतने अजीम, इतने पायस, इतने मुत्तकी, एक का नाम है सैयद मुर्तजा, एक का नाम है सैयद रजी। ये दो सगे भाई हैं, मुर्तजा बड़े भाई हैं, रजी छोटे भाई। काजमैन में जब आप सातवें इमाम के रोजे से बाहर आते हैं तो वो जो बाजार में दो रोजे, तो इमाम का रोजा तो बहुत अजीम बाबुल हवाइज, लेकिन बाजार में आपको दो रोजे मिलेंगे, एक सैयद रजी का है, एक सैयद मुर्तजा का है। ये वही हैं ये दो भाई कि इनके जमाने में जो मर्जे थे शेख मुफीद, उन्होंने रोजाना मर्जे, क्या मर्जे दरस खारिज देता है, इश्तिहाद का दर्स देता, रोजाना वो दर्स देते थे बगदाद में। एक रात को वो सो रहे हैं, कल सुबह दर्स देने जाना, ख्वाब में देखा शहजादी कौनैन पूरे हिजाब के साथ आई और अपने साथ दो बच्चे लाई हैं, शेख के सामने जाके बैठी हैं, बच्चों को आगे किया और कहा कि या शेख अल्लिम हुमा अल्फिक, ये दो बच्चे हैं मेरे बच्चे, इनको इल्म दीन और इल्म फिक और इल्म शरीयत सिखा दो, अल्लिम हा इल्म दे दो। शेख की आंख खुल गई, सर पीट लिया, ये मैंने क्या ख्वाब देखा, शहजादी आकर मुझसे कहें कि मेरे बच्चों को, बल्कि बाज़ उलमा ने लिखा कि हसन हुसैन मैं इनको तालीम दूंगा, जरूर मैंने कोई ऐसा गुरूर तकब्बुर और घमंड का जुमला कहा है कि शहजादी वार्न करने आई, पूरी रात अब तो नींद नहीं आई, इमाम हमसे नाखुश हो जाएं। और ये तो फातिमा हैं, फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है, फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज होता, दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो गई। ये क्या ख्वाब था, इसका मतलब क्या, पूरी रात नींद नहीं आई, रोते रहे। ये तो हम और आप हैं कि हमें परवाह ही नहीं है कि इमाम हमारे दाढ़ी शेव करने से खुश है कि नाराज, हमारी औरतों के बेहिजाबी से इमाम खुश है कि नाराज, हमारी मिक्स गैदरिंग से इमाम खुश है कि नाराज, बच्चे के बर्थडे की हम खुशी मना रहे हैं इमाम रो रहे हैं, शादी ब्याह का फंक्शन हम खुशी मना रहे हैं इमाम आंसू बहा रहे हैं। यह हदीस है ना कि जब मोमिन गुनाह करता है इमाम जमाना बीमार पड़ जाते हैं। कितनी सारी हदीसें हैं, कैसे मैं बयान करूं, मजलिसें अब बहुत कम रह गई हैं, तो हमें तो कोई इसकी परवाह ही नहीं, वी डोंट केयर। दोस्त नाराज ना होने पाए, रिश्तेदार नाराज ना होने पाए, सब लोग कहें कितना अच्छा इनका फंक्शन हुआ शादी का, इमाम नाराज हो गए, इमाम जमाना बीमार पड़ गए, कोई बात नहीं, वी डोंट केयर। सब ऐसे नहीं है, कुछ लोग हैं शेख मारिफत रखने, अपने जमाने के मर्जी हैं, पूरी रात नींद नहीं आई, सुबह नमाज के बाद मस्जिद जाना जरूरी था क्योंकि सारी दुनिया से स्टूडेंट आए हैं, उनका लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन आज वहां पहुंचे दर्स देने के लिए, दर्स खारिज, मगर दिल ही नहीं लग रहा है, अभी स्टार्ट भी नहीं किया था कि उस जमाने के एक बहुत ही पुआइस मुत्तकी परहेजगार और आलिम घराने की खातून अपने दो बच्चों को लेके आई, एक मुर्तजा है एक रजी, बिल्कुल उसी जगह आके बैठी जहां रात को ख्वाब में शहजादी बैठी, बिल्कुल वहीं पे अपने दोनों बेटों को बिठाया जहां रात को शहजादी ने अपने दो बेटों को बिठाया, और बिल्कुल वही जुमला कहा कि या शेख अल्लिम हुमल फिक्र, मेरे इन दो बच्चों को इल्मे दीन इल्मे फिक्र और इश्तिहाद की तालीम दे दी। अब शेख मुस्कुरा गए, अब समझ में आया कि शहजादी नाराज नहीं थी, इन बच्चों का रिकमेंडेशन मुझे दिया, चुनाचे इतनी मेहनत से पढ़ाया कि एक सैयद रजी बना। सैयद रजी का एक कारनामा, देखिए ये सदका जारिया होता, वही ऐसा है कि आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। उन्होंने नहजुल बलागा को कंपाइल किया, नहजुल बलागा मौला के खुतबात हैं, कुरान के बाद हर मोमिन के घर में नहजुल बलागा या पीक ऑफ एलिक्वेंस या उसका कोई और ट्रांसलेशन होगा। ये नहजुल बलागा किसने कंपाइल की, इसके कंपाइलर कौन है, किसने इतनी मेहनत करके मौला के खुतबात को बचाया, सैयद रजी एक एक बेटा और सैयद मुर्तजा। अब्बासी खलीफा का वजीर आजम बीमार हुआ, हर इलाज कर लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत बड़ी उस जमाने की पावर अब्बासी खलीफा, टाइम नहीं है कि एक जुमला भी कहूं। रोते रोते आखिर मौला को उसने पुकारा, अगरचे वो अपना नहीं है, अब्बासी खलीफा का वजीर आजम अपना नहीं है, लेकिन यही तो इस दरवाजे की खसूसियत है कि बदतरीन दुश्मन भी आता है, मदद यहीं से मांगता है, कहता भी है लौला अलीयुन लहलका फलां, अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। लेकिन जब काम निकल जाता, खुदा ना खास्ता हमारी भी हालत ये ना, मुश्किल कुशा याद आ जाते हैं, जनाब कासिम की आज मेहंदी खवातीन में हुई जिसके इफेक्ट अब तक पड़ रहे हैं, जो आप इतना शोर सुन रहे हैं, और यह है कि जनाब अब्बास की हाजिरी है, हाजतें मन्नतें लोग लेके आते हैं और काम पूरा हो गया फिर भूल गए। ऐसा ना हो, यह तो दुश्मन अहले बैत का तरीका है। अब्बासी खलीफा के वजीर आजम ने मौला को पुकारा रात को ख्वाब में मौला, और कहा कि तुम्हारा इलाज मैं नहीं करूंगा, मेरे बेटे आलमुल हुदा के पास जाओ। आलमुल हुदा का मतलब है फ्लैग ऑफ हिदाया, आलम हिदायत, जो हिदायत का आलम है, आलम कल की मजलिस आलम की थी। घबरा के कहा कि या अबुल हसन वो कौन है, कहा कि बगदाद में मेरा बेटा मुर्तजा, मौला ने इनको टाइटल दिया आलमुल हुदा, शेख मुफीद ने इस तरह पढ़ाया। अब सैयद मुर्तजा जो बड़े भाई हैं वो मर्जे बने बाद में, और बाद से मतलब जैसे ही शेख मुफीद का इंतकाल हुआ वो मर्जी हो गए। अब ये दो भाई दोनों बहुत अजीम, एक ने नहजुल बलागा कंपाइल की और एक तो मर्जियत के इतने बड़े स्टेटस पर गया कि क्या उनके हालात बताओ, मेरी 90 मिनट की पूरी स्पीच है सैयद मुर्तजा पर। बाप का इंतकाल हुआ। देखिए अब कल रात से की मजलिस से जरा सा इसका कनेक्शन भी मिला और जो आज मेरे साथ की बात हो रही है वो भी जरा आगे बढ़ी। बाप का इंतकाल हो गया, बाप के मरने के बाद यानी हर आदमी के मरने के बाद उसकी जायदाद और मीरास वारिसों में तकसीम होती और इस्लाम ने उसका एक सेट सिस्टम बनाया कि इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। हमें और आपको उसमें इंटरफेयर करने का हक ही नहीं, ये हमारा पावर नहीं है कि हम कहें कि इस्लाम ने इसका हिस्सा शेयर कम रखा है हम बढ़ा देते हैं, उसका ज्यादा रखा है कम कर देते हैं, नहीं। हां, 1/3 हर आदमी विल कर सकता है। बाप के पास एक बहुत ही वैल्यू वाली और एक्सपेंसिव किताब थी। देखिए जब से प्रिंटिंग इंडस्ट्री सामने आई है और फिर ये तो उसके बाद जीरोक्स और स्कैनिंग और ये सब, किताब की वैल्यू नहीं रही, वरना पहले किताब गोल्ड से ज्यादा कीमती होती थी जब हाथ से लिखना पड़ती थी, एक कॉपी होती थी फकत एक किताब की, हाथ से पूरी बुक लिखना आसान नहीं है। तो एक बहुत ही कीमती किताब थी जिसमें आइम्मा की हदीसें। अब मसाला यह है कि ऐसी चीज वारिसों में कैसे तकसीम हो, क्योंकि उसूल तो यह है ना कि बीवी का हिस्सा है 1/8, बेटों का हिस्सा है इक्वल जो बचे, अगर कोई और वारिस जिंदा है तो किताब, एक किताब ओनली वन उसकी कॉपी है दुनिया में, वो कैसे तकसीम हो, कुछ सफे बाहर के बीवी को दे, कुछ बड़े बेटे को, कुछ छोटे बेटे को, जाय हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो अमूमन ऐसी चीज में लोग वसीयत करते थे। चुनाचे बाप ने वसीयत की कि मेरे दो बेटे दोनों बड़े आलिम हैं और दोनों बहुत ही पुआयस हैं, इनमें से जो ज्यादा डिजर्व करता है किताब ये उसको दे दो। अच्छा, वसीयत जो है ना ये सीक्रेट चीज होती है, जब आदमी मर जाता है तब वसीयत खोली जाती है इसमें क्या लिखा। अब जब वसीयत खोली गई बाकी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये मकान, ये लैंड, ये प्रॉपर्टी, ये खेत, ये कैश, वो तो आसान है डिस्ट्रीब्यूशन। किताब, अब जब वसीयत खोली तो उसमें लिखा था कि जो ज्यादा डिजर्व करता, अब कौन ज्यादा डिजर्व करता है ये डिसाइड कैसे हो। बेशक शरीयत का मसला है कि मरने वाले की 4 चीजें राइट है ओनली बड़े बेटे का, लेकिन उसमें सिर्फ कुरान है, और कुरान भी अगर उसके घर में 2 हैं जो उसको वो तिलावत करता, तो अगर सिस्तानी फरमाते हैं एहतियात वाजिब भी है कि दूसरे कुरान में वारिस आपस के अंदर कंप्रोमाइज करें कि ये बड़े बेटे का हक है कि सबका हक है, बहुत डिटेल। तो खुलासा यह है कि कुरान किताबें नहीं, ये तो हदीस की बहुत अहम किताब थी। चुनाचे दोनों भाइयों झगड़ा हो गया। अच्छा, किताब इतनी कीमती चीज है एक आलिम के लिए, और स्पेशली पुराने जमाने में जब ओनली वन कॉपी दुनिया में मौजूद, जो नॉनसेंस किताबें हैं उसका भी जो फर्स्ट एडिशन होता है वो मिलियन ऑफ डॉलर में ऑक्शन होता है। लेकिन ये तो हदीस, और उस जमाने में जब इमाम की हदीसें छुपाई जा रही हैं, मिटाई जा रही हैं, जाय की जा रही हैं, दोनों भाइयों ने कहा कि हम हर चीज में कंप्रोमाइज कर लेंगे, किताब हमको चाहिए, झगड़ा हो गया। अलबत्ता ये प्यार और मोहब्बत का झगड़ा, लोग कहते हैं कि मौलाना झगड़ा तो होता ही दुश्मनी में, नहीं, हम अपने माइंड सेट से सोचते हैं कि हर झगड़ा दुश्मनी में होता, कभी प्यार और मोहब्बत में भी इख्तिलाफ होता। शरीयत का मसला है ना कि अगर किसी जगह पे 2 इमाम आ जाएं, नमाज के वक्त पे 2 आलिम आ गए जो नमाज पढ़ा सकते हैं, खैर नमाज तो आलिम गैर आलिम सब पढ़ा सकता। हमारे यहां यह भी एक गलत कंसेप्ट आ गया कि इमाम जमात सिर्फ आलिम होगा, आलिम का सवाब ज्यादा, लेकिन अगर आलिम नहीं तो हर वो नौजवान या बूढ़ा जो आदिल हो और जिसका अरबी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, बहुत हाई होना भी जरूरी नहीं है, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद या कारी अब्दुल रहमान असुदैर के सऊद अशुरैम या माहिर मुअक्कली, ये नहीं, बखाली अप टू स्टैंडर्ड 33% मार्क्स भी उसको मिल जाए वो नमाज पढ़ा सकता। और सवाब इतना है, हमारे यहां लोग वैसे ही सवाब जाय कर देते हैं, एक डॉलर वैसे छोड़ने को तैयार नहीं हो, हक के फातिमा तक दबा लेते हो डॉलर बचाने के लिए, और कयामत की करेंसी, सवाब क्या है, सवाब वो करेंसी है जो कयामत में काम आएगी, डॉलर तो आपके यहां काम आएगा, आप ले जाएंगे यूरोप में आपको यूरो में चेंज कराना, आप ले जाएंगे इंडिया में आपको रुपए में चेंज कराना। तो इसी तरह से कयामत की करेंसी का नाम है सवाब, वो मिल रहा है आपको, हमने कहा नहीं चाहिए। तो खैर ये तो एक बीच में इसलिए बात आ गई कि महाराजे कराम भी इस बात पे बहुत ज्यादा अपसेट हैं कि आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मोमिनीन नमाज जमात को या इतना इजी बना लिया, दाढ़ी शेव करके वो नमाज पढ़ाता है तो पढ़ लेते, और या इतना स्ट्रिक्ट बना लिया कि शरायत हैं और फिर भी यानी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा फिर भी जमात नहीं पढ़ते, फुरादा पढ़ेंगे। जमात और फुरादा के सवाब में कोई मैचिंग भी नहीं है, इतना ज्यादा जमात का सवाब। लेकिन खैर, तो खुलासा ये कि बात ये हो रही थी कि मसला दो आदमी आ गए, दो आलिम आ गए जो नमाज पढ़ा सकते हैं, और अगर उनमें झगड़ा हो जाए कि कौन नमाज पढ़ाए, ये कैसा झगड़ा है? कहानी सवाब के लिए, नमाज पढ़ाने वाले का सवाब ज्यादा, वो कहे कि ये सवाब की बात है तो मुझे ज्यादा सवाब चाहिए, और वो कहे कि सवाब की बात है तो मुझे ज्यादा सवाब चाहिए। तो इस्लाम ने एक सोल्यूशन रखा है ना, कौन पढ़ाए, सोल्यूशन क्या होना चाहिए वो नहीं रखा, क्या होना चाहिए। कहा ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दोनों ही नमाज नहीं पढ़ा सकते, ये तो गुनाहगार हो गए, ये तो आदिल ना रहे। कहा नहीं, दोनों आदिल हैं, स्टिल आदिल हैं, क्योंकि सवाब के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो कभी झगड़े सवाब और फजीलत के लिए होते हैं। लेकिन बात बहुत ज्यादा फैल गई है, इसको समेटना है, भाइयों में झगड़ा हो गया कि हदीस की यह किताब तो मुझे चाहिए, वो कहे मुझे चाहिए। अच्छा, बात नाम लिख देता तो मसला खत्म, नाम नहीं लिखा, क्योंकि विल और वसीयत को अपडेट भी करना, हो सकता है कि जिस दिन विल लिखी जाए पहला बेटा ज्यादा फजीलत वाला हो, पांच साल के बाद दूसरा बेटा फजीलत वाला बन गया, तो नाम लिखने का मकसद है आप बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अपने वारिसों को। कहा जो अब झगड़ा हुआ, झगड़ा गया मां के पास, मां इतनी काबिल एहतराम खातून है, इतनी काबिल एहतराम खातून कि ख्वाब में शहजादी आई थी, अगली मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग मां आना है इनकी मां, उनकी जगह शहजादी आई, सैदानी है, दोनों भाई सैयद हैं, सैयद मुर्तजा सैयद रजी, तो मां भी बहुत समझदार, और उनकी एक खासियत थी तभी तो उनके बेटे इतने हाई स्टेटस पर पहुंचे कि वो मजलिस और लेक्चर में बहुत खामोश बैठती थी, एक खासियत थी जो आपको अपनी औरतों में नहीं मिलेगी। अच्छा खैर, बल्कि ये रिवायत में कि इश्तिहाद की तालीम के लिए फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं कि 40 साल की रिसर्च चाहिए, ये दोनों बेटे इनके बहुत जल्दी मुश्तहिद बन गए, 5 साल में 10 साल में। मां से पूछा कि आखिर कोई वजह है? कहा कि हां, जब तुम्हारा बाप इश्तिहाद की कदर से खारिज देता था मैं पर्दे के पीछे जाके चुपचाप बैठ के सुनती, मुझे कुछ नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, दर से खारिज आपकी भी समझ में नहीं आएगा, वो दे रहे हैं मैं खाली बैठी, आए मुर्तुजा जब मैं प्रेग्नेंट थी और तुम मेरे पेट में थे तब भी मैंने पूरा दर्स खारिज सुना, आए रजी जब तुम मेरे पेट में थे मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने पूरा दर्स खारिज सुना। वो मां के पेट में ही एक मर्तबा तो इश्तिहाद की पूरी तालीम ले ली, हर वो आवाज, आज तो जदीद साइंस ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि मां के पेट में मौजूद बच्चा मां के ख्यालात उस पर इफेक्ट डालते हैं, मां कुरान पढ़ने वाली हो तो बच्चे में कुरान का शौक होगा, और मां गाना सुनने वाली हो तो बच्चा गाने का शौकीन बनेगा, मां हराम खाने वाली हो तो बच्चा बिगड़ जाएगा जो मां के पेट में। अब ये तो एक अलग टॉपिक है तरबियत औलाद। कहा कि पूरा पूरा इश्तिहाद का दर्द जितने साल तुम्हारा बाबा जिंदा रहा मैं पर्दे के पीछे बैठ के सुनती, सुनो चाहे समझ में ना आए कान में जो जुमला जाता, बेहतरीन रिकॉर्डर अल्लाह ने बच्चे के दिमाग में लगाया, एक एक चीज वहां पर रिकॉर्ड हो जाती, इसलिए तुम लोग इतने जल्दी मुश्तहिद बन गए। अब झगड़ा हुआ कि हम में से कौन, हम में से कौन किताब को डिजर्व करेगा। अब मां की बात आई तो एक जुमला इसलिए कह दूं कि हमारी औरतें इस फ्रंट पे बहुत वीक है, मां जितना समझदार और नॉलेज वाली होगी उतना ही औलाद। अब जो लोग पहली मर्तबा मेरी मजलिस में आए वो हैरान होंगे, मौलाना कहां जा रहे हैं, और जिनको याद है कि आज एक माँ उम्मे फरवा के लाल कासिम का तस्किरा है, उनकी समझ में आ रहा होगा कि मजलिस का कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है। माँ देखिए, मुश्तहिद, ये दो बच्चे मुश्तहिद, एक मर्जे दूसरा मुश्तहिद है, लेकिन इतनी समझदार माँ, दीन को समझने वाली, कि वही काजमैन में सातवें इमाम का रोजा है ना, सैयद मुर्तजा वहां नमाज जमात पढ़ाते हैं। छोटा भाई इल्म में भी कम है, एज में भी कम है, रिश्ते में भी छोटा, छोटा भाई, वो नमाज पढ़ते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि नमाज के बीच में सैयद रजी ने अपनी नमाज को कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम जमात टू फुरादा की नियत कर ली। ये परमिशन है, आप फुरादा पढ़ रहे हो, जमात शुरू हो जाए आप नियत कन्वर्ट नहीं कर सकते। जमात पढ़ रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, आपको जल्दी जाना है तो फुरादा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सैयद रजी ने कन्वर्ट किया और घर आ गए, घर आ गए। जब बड़े भाई जमात खत्म करके लोगों से शेक हैंड करके बातें करके कुछ मसले लोगों को पूछना होते हैं इमाम से, घर आए तो मां से कंप्लेन की कि अम्मा मैं नमाज जमात पढ़ा रहा था, मेरा भाई बीच में जमात को छोड़ दिया उसने और घर आ गया। मां ने बुलाया, बेटा रजी तुम्हारा बड़ा भाई है, इल्म में भी ज्यादा है, और तुमने इसके पीछे नमाज जमात चेंज कर दी। सैयद रजी ने कहा कि अम्मा, अब देखिए ये मैं मासूमीन की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक जुमला मैंने कहा ना, हमारे तो ऐसे नायब इमाम है कि दूसरों के इमाम ऐसे नहीं है, ये नायब इमाम का वाकया। सैयद रजी ने कहा कि अम्मा मैं नमाज पढ़ रहा था, मैंने देखा मेरा भाई नमाज तो पढ़ा रहा लेकिन खून के समंदर के अंदर गोया होता लगा रहा, खून के अंदर वो जो है ना स्विमिंग कर रहा। क्या बात हुई? सैयद मुर्तजा नमाज जमात पढ़ाने आ रहे थे, मुसल्ले के करीब पहुंचे कि एक औरत आई और उसने एक फिकही मसला पूछा नजासत के बारे में, जो खून वगैरह की नजासतें। सैयद मुर्तजा ने कहा कि टेक्निकल मसला है, जवाब मैं नमाज के बाद दूंगा क्योंकि जमात में देर हो रही, लेकिन अब औरत ने बात पूछ ली ना, तो जितनी देर नमाज पढ़ा रहे हैं वो मसले पर भी गौर कर रहे हैं कि क्या इसका जवाब निकलेगा। ये औरत को नजीस माने कि पाक माने कि इसको गुसल कर लेना है कि खाली कपड़े वपड़े बदलना है, अब ये सोच रहे हैं। फिर नेचुरल बात है कि आप जमात फुरादा नमाज में भी जा रहे हैं और कोई चीज आपसे पूछ ली जाए। सैयद रजी, यानी देखिए इतना हाई स्टेटस कि भाई का दिल और दिमाग पढ़ रहे हैं। आपके दिल में क्या है ये किसी को नहीं मालूम। कितने लोग इस वक्त मुझे कंडेम कर रहे होंगे कि मौलाना आज की रात एक तो टाइम भी ज्यादा ले रहे हैं, पता नहीं कहां कहां की बातें कर रहे हैं, लेकिन चेहरों से तो नहीं लग रहा है ना। नहीं, कुछ के चेहरों से भी लग रहा है लेकिन बहरहाल जबान से तो नहीं ना। अब सैयद रजी नमाज में, देखिए ये हाई स्टेटस है, एक मर्तबा कहा कि मेरा भाई अल्लाह की नमाज पढ़ रहा और उसका दिमाग जो है वो खून के समंदर में, ये वाला खून पाक है कि नजीस है, औरत नजीस है कि पाक है। वैसी नमाज सिर्फ अली पढ़ सकते हैं कि हालत नमाज में तीर खेचो तो पता ना चले, और कोई ऐसी नमाज नहीं पढ़ सकता। लेकिन भाई की ख्वाहिश है कि बेहतर से बेहतर नमाज, इसलिए मैंने अपनी नमाज चेंज कर दी। मां देखिए, मुश्तहिद नहीं है, मर्जे नहीं है, कोई औरत आज तक मर्जे नहीं बनी, लेकिन मराजे को पैदा करने वाली का नाम औरत। मर्जे दुनिया में आता है औरत के जरिए और औरत की वजह से। अब देखिए मां, उसने कहा बेटा रजी, तेरा भाई नमाज में एक मसाला शरई पे गौर कर रहा, फिर भी वो हुक्म खुदा पे गौर कर रहा है ना कि ये हलाल है कि हराम, शरीयत में क्या कहा गया, शरीयत की बात पे सोच रहा है ना नमाज, अपने बारे में क्या ख्याल है। तुम नमाज पढ़ रहे थे कि अपने भाई का दिमाग चेक कर रहे थे? भाई पर तो कंप्लेन है कि उसकी अटेंशन नहीं है नमाज की तरफ, लेकिन फिर भी उसकी अटेंशन हुक्म खुदा की तरफ तो है ना। तुम्हारी अटेंशन तो भाई के दिल की तरफ है, तुम्हारी नमाज तो उससे ज्यादा वर्स है। मां ऐसी हो तब एक बेटा मर्जे बनता है, एक बेटा नहजुल बलागा जैसा गिफ्ट कयामत तक हमको देके जाता। अब झगड़ा हो गया, मां ने बुलाया, कहा बेटा बाप ने, तुम्हारे बाप ने ये लिखा है कि जो ज्यादा डिजर्व करता। तो ऐ रजी बताओ कि तुम्हारा राइट इस किताब पे कैसे बने। ये होते हैं हमारे मराजे, और ऐसे मराजे कब हमारे सामने आते हैं, जब वैसी माएं होती हैं। हमारी माँ ऐसी होगी, वो तो नमाज में भी गाने के बारे में सोच रही होगी और फिल्मों के बारे में सोच रही होगी। एक बार सैयद रजी कहते हैं कि अम्मा ये किताब मेरी, मैंने जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया। हमने कहा ना कि मासूम की मीनिंग हम लेते हैं जिसने गुनाह ना किया। अरे ये तो हमारे उलमा की खासियत है, जिंदगी में जब से मैंने होश संभाला है आज तक कोई गुनाह नहीं किया, ना बड़ा गुनाह ना छोटा गुनाह। तो यह हक मेरा। माँ ने सैयद मुर्तजा को देखा, कहा बेटा अब तुम बताओ कि इस किताब पे तुम्हारा हक क्यों। मासूम की किताब है, हदीस की किताब है, शरीयत की किताब है, इसलिए भाई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं, वरना तो छोड़ देता एक भाई दूसरे के लिए। सैयद मुर्तजा ने मुस्कुरा के कहा अम्मा ये किताब मेरी, मेरे भाई ने तो जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया, मैंने जब से होश संभाला कभी गुनाह के बारे में सोचा तक नहीं है। गुनाह न करना अलग चीज है, दिमाग में भी ख्याल नहीं आया गुनाह के बारे में। माँ ने ये किताब बड़े बेटे को दी, वही मर्जी बने आगे चलकर, वही सैयद मुर्तजा करार पा। तो गुनाह न करना, ये तो हमारे पास एक लिस्ट है पूरी मराजे के नाम है कि ये मर्जी है जिन्होंने जिंदगी में बिफोर मर्जियत भी कभी गुनाह नहीं किया। मासूमीन को जब हम कहते हैं 14 मासूम, और जब औलादे मासूमीन को कहते हैं अब्बास व अकबर व जैनब के महफूज अनिल खता, वो तो बहुत ही ज्यादा हाई स्टेटस। मगर अपने मराजे तक को आप देखिए, दुनिया के पास इसकी एग्जाम्पल नहीं। हाँ अल्लाह ने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया, अब हमारा काम यह है कि हर वक्त उनकी बुराई करें, हर वक्त उन पर एलिगेशन लगाए, हर चीज के अंदर कोई खराबी निकाले, दुश्मन ब्रेन वॉश करता जाए हम ब्रेन वॉश होते चले जाए। भाई यही कुछ तो मुआविया और यजीद ने करबला में किया था, पहले इमाम अली के खिलाफ ब्रेन वॉश किया था लोगों को। हर आदमी दिल से दुश्मन नहीं था, उनको बताया ऐसा गया था वो दुश्मन हो गए। वो तो करबला में आका हुसैन ने खुतबात दे दे के बिल्कुल वाजे कर दिया कि अब कोई ये ना कहे कि मैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आ गया। मगर जरा सोच, नेमत अल्लाह दे रहा, रद्द मजाल, जन्नत का दरवाजा बहुत करीब आ गया है, कहा मिरसात पे रोक लिया गया, कहां जा रहे हो। आपने कहा जी वो अली ने लिख कर दिया, ये मेरा शिया और जन्नती है, जन्नत में जा रहा हूं। कहा ऐसे नहीं जा सकते, पहले हिसाब देना है, फुला मोमिन का हक मारा। तुम्हारा इमाम तो वो है कि बैतुल माल का चिराग गुल कर देता है कि नहीं सारे मुसलमानों का हक जाय ना हो जाए एक की वजह से, और तुम कभी शहजादी कहा, कभी आइम्मा कहा, कभी मराजे कहा, कभी अमंग योरसेल्फ। अब मर्जे मर्जे शायद मर्जे हो, शायद मर्जे से एक डिग्री कम, नाम नहीं लेता हूं, वरना इस एंटी मर्जे ये जमाने में लोग उसको एक एग्जाम्पल बना लेंगे, लेकिन मासूम तो नहीं है ना। मौत के बाद एक साल के बाद उनके दूसरे मर्जे दोस्त, ये भी मर्जे वो भी मर्जे। अब सैयद मुर्तजा और सैयद रजी के वाकयात आपने सुने, ये हजार साल पहले की बात, आज भी मरहूम आयतुल्लाह लुज़्मा आगा तकिया बहजत तो रिसेंट हमारे जमाने के हैं, कितने ऐसे उनके वाकयात हैं जो मेडिकल से बढ़कर है। लेकिन अभी बात बहुत ज्यादा फैल गई है, इसको समेटना। दो तीन दिन और हमारे पास है मजलिसों के, चार दिन। तो अब एक साल बाद जिंदा मर्जे ने मरहूम मर्जे से पूछा, एक साल बाद आप मेरे ख्वाब में आए, खैरियत का? कहां खैरियत, एक साल तक इंट्रोगेशन में फंसा हुआ था, बड़ा सख्त जमाना गुजरा मेरे ऊपर, आप पर मर्जे नायब इमाम? कहा कि हां। रीजन का रीजन यह है कि एक दिन मैं कूफे में सड़क क्रॉस करना चाह रहा था कि एक बार ऊंटों का काफिला आ गया। अब जो ऊंट है ना, जिन पे भूसा और सामान लादा जाता है, ये इस तरह से चलते हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया में कार्गो ट्रेन या मालगाड़ी, डिब्बे 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 70, 80, 90, 91 खड़े खड़े आप बोर हो जाए। कहा वो ऊंट एक दूसरे की दुम से बांध के उनको चलाया जाता, अब वो चल रहे थे, मैं खड़े खड़े थक गया। करीब जो ऊंट था उसकी कमर पर भूसा या स्ट्रॉ से छोटा सा तिनका मैंने तोड़ा, और जैसे टूथपिक के तौर पे, बाद लोगों की आदत होती है कारपेट में बैठेंगे यहां से कुछ निकाल के खिलाल करने लगेंगे, शतरंजी पे या चटाई पे बैठेंगे बैठेंगे, बस एक मरतबा मैंने छोटा सा टुकड़ा निकाला, दांतों में एज ए टूथपिक इस्तेमाल किया, ऊंट खत्म हो गए 80-90-100, उसको फेंका जमीन पे चला गया। कब्र में पहला सवाल ये हुआ कि वो मोमिन का माल था, ये तिनका तुमने विदाउट इस परमिशन कैसे तोड़ के इस्तेमाल किया, इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये उसका जवाब देने में एक साल गुजर गया, आज इंट्रोगेशन मुकम्मल हुआ और मुझे कैसे रिहाई मिली। यकीनन एक बात कह दूं, जिनके रुतबे हैं सेवा उनकी मुश्किल है, आपके साथ ये नहीं होगा, मेरे साथ ये नहीं होगा। जिसका इल्म जितना ज्यादा उतना उसको सवाब भी ज्यादा मिलता है, उतना ही उससे स्ट्रिक्टली सवाल होता। लेकिन आपसे कम से कम ये सवाल तो होगा ना कि फला मोमिन का कर्जा लिया वापस क्यों नहीं किया, फला मोमिन का हक क्यों जाया किया। मां से सवाल होगा ना कि अगर तेरा शौहर मर गया वो गम अपनी जगह, तूने अपने नाबालिग बच्चे का माल कैसे खर्च किया। वारिसों से सवाल होगा ना कि तुम्हारा तो हक ही नहीं बन रहा है बाप के इनहेरिटेंस में, तुमने कैसे इसको यूज कर लिया। भाइयों से सवाल होगा बहन का हिस्सा दिया कि नहीं। बेवा से सवाल होगा तूने अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, बड़ी लड़ाई होती थी, बड़ा झगड़ा होता था, सास बहू जो है ये कभी एक साथ नहीं जमा हो सकते, शेर और बकरी एक साथ जमा हो सकते होंगे सास और बहू नहीं, लेकिन झगड़ा अपनी जगह। जब तेरा शौहर मर गया उनका जो हिस्सा है वो उनको पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, एक एक चीज के बारे में सवाल होगा। बल्कि शरीयत का एक मसला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसका सोल्यूशन बहुत इजी, वो ये है कि अगर किसी की डेथ हो जाए और उसका कोई एक बच्चा नाबालिग, मरने वाले की विडो या बेवा को यह हक नहीं है कि नाबालिग का पैसा नाबालिग पे खर्च करे, हक ही नहीं है उसको। एक लफ्ज आता है इस्लाम में वली, नाबालिग का वली सिर्फ उसका बाप होता या दादा होता, मां नहीं होती। अपने ऊपर एक पाई नहीं खर्च करे, बच्चे का ही पैसा, उसी से उसके स्कूल की फीस, उसी से उसके लिए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, उसी से उसके लिए फूड प्रोवाइड किया जा रहा, ये भी जायज नहीं। अब शौहर मर गया, घर में इतना बड़ा एक गम आ गया, वो अपनी जगह, और जो बेचारी ये बेवा औरत इतना अपने बेटे का ख्याल कर रही है, ये गुनाहगार बन रही है। सोल्यूशन बहुत ही इजी, अब देखिए सोल्यूशन, अगर शौहर अपने लाइफ टाइम बीवी से कह दे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नाबालिग बच्चों के मामलात को डील करने की परमिशन देता हूं, इख्तियार बाप को है या जो बाप का रिप्रेजेंटेटिव हो, एक जुमले में अपनी बीवी को रिप्रेजेंटेटिव बना दीजिए बच्चों का। बीवियां शौहर की रिप्रेजेंटेटिव तो बनती, भाई खूबसूरत लड़की से शादी करना ताकि पता चले ये फुला साहब की बीवी, वो भी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर शौहर के आगे आगे चले ताकि शौहर का एडवर्टाइज हो कि देखो इसको कितनी खूबसूरत लड़की मिली। मां उसको अपने बेटों पर मुकर्रर कीजिए, एक जुमला इतना इजी, सिर्फ इतना कह दें कि मेरे बाद मेरे बच्चों को तुम देखना, खत्म बात, हराम हलाल हो गया, गुनाह सवाब में बदल गया। एक एक सर्विस जो आप औलाद को देगी उसका उसको सवाब मिलेगा, मगर इतना एक जुमला कौन नहीं कहेगा, मालूम नहीं। यही तो दो दिन से मेरी कंप्लेन थी, यानी मेरा मजलिस का टॉपिक था कि बहुत सारे गुनाह हम गुनाह की इंटेंशन से नहीं करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से करते हैं, हमको मसाला ही नहीं मालूम। और इसकी एक्सट्रीम मिसाल दे दूं, बस स्टार्ट करूंगा कंप्लीट कल करूंगा। यूजुअली इस्लाम में वाजिब चीजें ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, सुन्नत चीजें इतनी स्ट्रिक्ट नहीं। वाजिब रोजा आपने रखा रमजान का, ब्रेक करने की परमिशन नहीं, तो मजबूरी हो तो अलग बात, सुन्नत रोजा रखा जब आपका दिल चाहे ब्रेक कर दीजिए विदाउट एनी रीजन। वाजिब नमाज शुरू कर दी विदाउट रीजन आप तोड़ नहीं सकते, सुन्नत नमाज शुरू कीजिए आपने एक रकत पढ़ी का मूड नहीं हो रहा छोड़ दिया आप कोई बात नहीं। खुमस वाजिब है, जिस डेट आ गई फौरन देना, चैरिटी वाजिब नहीं, आप दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, देते देते रोक लिया हाथ कि नहीं भाई नहीं देंगे। सुन्नत चीजों के अंदर इतना इस्लाम स्ट्रिक नहीं है, बल्कि आयतुल्लाह सिस्तानी और उनसे पहले आयतुल्लाह खुई और आयतुल्लाह इमाम खुमैनी की तौसी में तो एक मसला ऐसा आ गया कि लोग धोखे में पड़ गए। उसमें लिखा है कि वाजिब नमाज के लिए वजू वाजिब है, सुन्नत नमाज के लिए वजू वाजिब नहीं। बगैर वजू के लोग नमाजें पढ़ने लगे वो तो जायज नहीं, इसका कुछ और मीनिंग है, टाइम नहीं है मेरे पास। तो खुलासा यह है कि सुन्नत चीजें जरा सी उसके अंदर सहूलत है, फैसिलिटी, सिवाय एक्सेप्ट हज। हज वाजिब है ना, उमरा सुन्नत है, यह फार्मूला यानी चलेगा। हज की गलतियां फिर भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, उमरे की गलतियां बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। यहां भी वही बात है कि लोग अपने जहन से चीज सब बना लेते हैं कि भाई हज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ग्रुप में जा रहे हैं, कहा फुला ग्रुप में क्योंकि वहां बहुत अच्छा गाइड करने वाला आलिम मौजूद। अच्छा उमरा, कह नहीं उमरा तो हमारे फैमिली मेंबर से वीजा लिया चले जाएंगे, वो वाजिबात कोई थोड़ी है। उमरा मोर इंपॉर्टेंट देन हज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मसाइल, जो उसके मसाइल हैं वो हज से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन मैंने देखा उमरे में कोई किसी आलिम के साथ जाने या आलिम वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता, फैमिली मेंबर्स हुए और चले गए, ये समझ करके ये तो सुन्नत है। और हज में खाली फैसिलिटी नहीं देखते हैं, आलिम भी ऐसा हो जो मसाइल बता सके, सब लैक ऑफ नॉलेज। कहां कहां मैं एग्जाम्पल दूंगा, मुहर्रम की मजलिसों में, गम की बड़ी रातों में तो बात जरा समझ में भी नहीं आई। मगर ये जो प्रॉब्लम हमारे यहां कि गुनाह हम इस भाई शराब पिए हम मसलन फर्ज कीजिए, और वो गुनाह करें तो समझ में आता है उसका एक मजा है। अखर मैंने नहीं पी, आप नहीं कहिएगा कि मौलाना आपको कैसे पता चला, शराब पीने वालों ने बताया। हाय जालिम तूने पी ही नहीं, उर्दू का शायर दाग दहलवी हमसे कह रहा कि पी के तो देख क्या मजा है इसके अंदर, लेकिन एक समझ में आए। गाने सुने हमारे बच्चों ने, ठीक है हराम किया गुनाह किया, लेकिन एक मजा तो आया ना उनको। एक आदमी ने खुमस नहीं दिया, बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन एक बेनिफिट तो मिला ना कि वो $20 उसके बच गए 100 में से। ये वाले गुनाह जो ना आदमी प्लेजर के लिए कर रहा, ना आदमी पैसा बचाने के लिए कर रहा, ना इंटेंशन ऑफ गुनाह, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उससे गुनाह हो रहे हैं, इस पे तो ज्यादा अफसोस होता कि वो जो गुनाहगार है उसने दुनिया में तो कुछ ले लिया ना, ये बेचारा तो दुनिया में भी बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ गुजारी और मालूम हुआ कयामत में भी हिसाब किताब देना। यकीनन अल्लाह अरहमुर राहिमीन भी है, आदिल भी है, फर्क रखेगा इंटेंशन वाला गुनाह और अन इंटेंशन। लेकिन यह अन इंटेंशन वाला गुनाह भी क्यों हो, लैक ऑफ नॉलेज। और लैक ऑफ नॉलेज की बात जहां पे आ गई ना, इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों पे आती है। चले अब औरतें खामोश हो गई तो बात की जा सकती है, औरतों पे आती। पहली ट्रेनिंग जो बच्चा लेता है बाप से नहीं लेता, संडे स्कूल से नहीं लेता, रेसिडेंस आलिम से नहीं लेता, मर्जी और मुश्ताहिद से नहीं लेता है, पहली ट्रेनिंग मां से लेता। इतनी कि मां के पेट में यह बच्चा है और वहां से उसने मां के जो व्यूज हैं, जो हराम है, जो हलाल है, उस सब के असरात लेना शुरू कर दिए। तो अगर मां बेचारी ही को नहीं पता कि यह वाजिब है और वो विदाउट इंटेंशन ऑफ गुना वो वाजिब छोड़ रही है, तो असर तो पड़ेगा ना बच्चे पर। मां अगर कोई गलत मेडिसिन खा ले तो कहा जाता है कि जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई दवा मत लीजिए, पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आम फूड उसमें भी एहतियात होती है प्रेग्नेंट औरत की, तो ये हराम हलाल तो ज्यादा मां की नॉलेज में हो तो वो अपने आप को हराम से बचाएगी। चुनांचे हमारी माएं वीक हैं तो हमारी नई जनरेशन भी वीक। और करबला में अगर लैला जैसी मां थी, रबाब जैसी मां थी, फरवा जैसी मां थी, तो हमारे सामने अकबर हो, हमारे सामने असगर हो, हमारे सामने कासिम की एग्जाम्पल आई। शहीद करबला के शहीद एक रोल मॉडल है, लेकिन ये भी तो देखिए कि ये रोल मॉडल को रोल मॉडल बनाने में उसकी मां का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन। एक जुमला जिससे सिमिलर जुमला मैंने कल भी कहा था लेकिन कल जनाब ज़ैनब और जनाब अब्बास के लिए कहा था, आज यही जुमला उम्मे फरवा और उम्मे लैला और रबाब के लिए कहता हूं। देखिए हमारा अकीदा यह है कि ज़ैनब का रुतबा बुलंद और ये सब ज़ैनब के बाद रुतबे, अगर ये अकीदा ना होता तो हमें तो कोई फर्क ही नहीं लग रहा है कि फरवा और ज़ैनब के जिहाद में, हमें तो कोई फर्क ही नहीं लग रहा है रबाब और ज़ैनब के जिहाद में। करबला को देखते हैं तो दोनों बिल्कुल सेम और सिमिलर लगते हैं। अच्छा, फिर ज़ैनब ने करबला में जो जिहाद किया, रबाब ने जो जिहाद, उम्मे कुलसूम ने जो जिहाद किया वो समझ में आता। क्यों समझ में क्यों आता है? बहरहाल कुछ भी सही अली की बेटी, यानी कुछ भी सही का मतलब नऊज़ुबिल्लाह तो ही नहीं, अगर वो 14 मासूमीन में नहीं है, अली की बेटी है ना, फातिमा की बेटी है ना, उन्होंने फातिमा का दूध ऐसा गिजा लिया है, उनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा, जिस घर में पैदा हुई है वो मासूमीन का घर था, अली जैसा बाप, फातिमा जैसी माँ, हसन हुसैन जैसे भाई। इस माहौल में तो अगर एक कनीज फिज्जा आती है तो इतनी बड़ी बन जाती है, ये तो खुद अली का हिस्सा है, तो खुद पार्ट ऑफ फातिमा। लेकिन सही मानों में हमारा सलाम हो उम्मे फरवा, रबाब और लैला को, जो आम घरानों में पैदा हुए, उम्मती घरानों में, जैसे हमारे और आपके घर, इनमें से किसी का बाप मासूम नहीं, इनमें से किसी की मां मासूमा नहीं, इनमें से कोई मासूम बहन भाइयों के दरमियान नहीं पला बड़ा, आम घराने ही, हाँ शरीफ घराना है, पायल घराना है, लेकिन जैसे हमारे और आपके घर, वहां से जब अली के घर में अली की बहू बन के आई, लैला भी अली की बहू बनी, रबाब भी अली की बहू बनी, फरवा भी अली की बहू, तो अल्लाह ऐसा किरदार दिखा दिया कि अली और फातिमा की बेटियों में और बहुओं में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। मैं अक्सर कहता हूं कि सही मानों में अली और फातिमा के नाम की किसी ने लाज रखी है तो वो अली की बहुएं, उम्मती घर से आके वो किरदार दिखाया जो मासूम घराने का किरदार, और उसमें भी खास तौर पे हमारा सलाम हो उम्मे फरवा। क्यों भाई? लैला, रबाब, फरवा तीनों अली की बहुएं नहीं, ये तीनों बाकी दो बहुएं वो जो आशूर के दिन तक उनके सुहाग सलामत थे, उनका शौहर जिंदा था, वो अपने शौहर के साथ एक जिंदगी गुजार रही। उम्मे फरवा अली की वो बहू है जो जवानी में बेवा हो गई। औरतों से पूछिए, अगर कोई औरत जवानी में बेवा हो जाए और छोटा सा बच्चा उसकी गोद में हो, अब वो सारी जिंदगी एक ही ख्याल में गुजारती कि मेरी जिंदगी में जो एक कमी आ गई, बेटे के जरिए ये कमी पूरी करूंगी, मेरा बेटा जवान होगा, उसकी शादी होगी, उसकी अच्छी जिंदगी होगी, बेवा मां अपने सारे गम और दुख भुला देती। लैला और रबाब करबला के मैदान तक सुहाग वाली थी, फरवा अली की उस बहू का नाम, करबला की उस मां का नाम जो 12 साल पहले बेवा हुई है, जवानी में बेवा हुई है और औलाद भी थी और बहुत छोटी औलाद थी, कासिम मां की गोद में थी। 12 साल उम्मे फरवा ने किस तरह से गुजारे, बस हर वक्त आंखों के सामने एक मंजर होगा, मेरा कासिम जवान हुआ, उसकी शादी हो रही। आप मर्द नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ बेवा औरतें समझ पाएंगी जो साहिब औलाद भी, किस तरह मां के सामने हर वक्त एक तस्वुर होता, बेटा जवान हो, उसकी शादी करूं, मैं तो बेवा रही, फिर मेरी बहू आएगी और मेरा बेटा और बहू, यही मंजर देख देख के बेवा मां जिंदा रहती। फरवा ने भी इसी तरह 12 साल गुजारे। 12 साल गुजर गए, करबला की शब आशूर आ गई। अब मां, वो जो 12 साल पुराना सपना या ड्रीम या ख्वाब है, या 12 साल पुरानी तमन्ना और ख्वाहिश और मुराद है, अब करबला का मैदान, अब वो भूल गई ख्वाहिश, अब मां की एक और तमन्ना, वो क्या है? शब आशूर शुरू हुई, हुसैन ने चिराग गुल किया, आधी रात के बाद सैदानियों के खेमे को देखा, और फजर के करीब, शब आशूर के तीन हिस्से मेरी मजालिस में आ गए, आज आखिरी हिस्सा आ रहा, फजर के करीब, फजर से कुछ पहले اب حسین خود اپنے حجرے میں آ کے مصلی پہ بیٹھے، مردوں کا سروے ہو گیا، عورتوں کا سروے ہو گیا، کربلا کی عورتیں، اب حسین خود مصلی پر آ کے بیٹھے، پوری رات عبادت کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کو یاد کرتے کرتے حسین کے ہاتھ آسمان کی جانب بلند ہیں، آنکھیں بند ہیں، چہرہ آسمان کی جانب اٹھا ہے، ایسا لگا کوئی مصلی پر میرے برابر آ کے بیٹھ گیا۔ زائرین کربلا، آپ کے ذہن میں دو تصویریں آ گئی ہوں گی نا، خیمہ گاہ میں حسین کا خیمہ جہاں تھا وہ جگہ بھی ہے، اور خاص طور پر الگ سے ام فروہ اور قاسم کا خیمہ بھی بنایا، وہ الگ سے جگہ ہے، اس کو خاص پریزرو کیا، قاسم وہیں سے نکل کے آئے۔ حسین نے محسوس کیا کوئی میرے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا، حسین نے آنکھیں کھولی، اس وقت کون آیا؟ یہ رات کا آخری حصہ، دیکھا میرے بھائی حسن کی نشانی، میرا کمسن بھتیجا قاسم میرے پہلو میں بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، قاسم بیٹا یہ رات کا وقت ہے، آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، تیری ماں خیمے میں اکیلی ہے، ماں کے پاس جا، ماں کے پاس بیٹھ، یہاں کیوں آ گئے؟ قاسم نے کہا، چچا میں خود سے نہیں آیا، اماں ہی نے مجھے بھجوایا، اور اس لیے بھجوایا ہے کہ اماں مجھ سے کہنے لگی، قاسم تو حسن کا لال تو بے شک ہے مگر میرا بھی بیٹا ہے نا، ایسا نہ ہو کل مقتل میں تیرے قدم پیچھے ہٹ جائیں تو لوگ کہیں کہ حسن کا بیٹا تو پیچھے نہ ہٹتا، یہ فروہ کے دودھ کی خرابی۔ آقا سے اتنا پوچھ کے آ جا کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے کہ نہیں۔ 12 برس جو بیوہ عورت اپنے یتیم بچے کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزار رہی، آج شب عاشور اس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میرا بیٹا بچ جائے، بلکہ تڑپ رہی ہے کل کے شہیدوں میں میرے بیٹے کا نام ہے کہ نہیں۔ بیوہ ماں یہ تمنا کرے، دنیا کے سارے قانون ماں کا جذبہ چینج کر کے رکھ دیا کربلا، نیچر بدل دی۔ حسین نے کہا، قاسم یہ بتا، شہیدوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کیفا عندک الموت یا بنیا، اے بیٹا موت ہے کیا تجھے پتا بھی ہے؟ حسن کا بیٹا یہی جواب دے گا، نہیں ام فروہ کی تربیت یہی جواب دے گی، کہا احلی من الاصل، چچا شہد سے زیادہ سویٹ اور شہد سے زیادہ شیرین اور خوشگوار ہے موت، لیکن چچا آپ نے جواب نہیں دیا کل میرا نام ہے کہ نہیں۔ حسین نے قاسم کو بدن سے لپٹا لیا، قاسم کا جسم سونتے جاتے، کہتے جاتے قاسم بیٹا تجھ سے مجھے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے، ارے کاش آج میرا بھائی کربلا میں میرے ساتھ ہوتا تو وہ یہ دیکھتا کہ اس کا حسین کن مصیبتوں میں گھر گیا۔ قاسم نے کہا، چچا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کل مرنے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ بس ایک مرتبہ جب تیسری بار قاسم نے کہا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، چچا ایسا لگ رہا ہے کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے، تبھی تو آپ جواب نہیں دے رہے۔ حسین نے کہا، قاسم تو اپنے بارے میں پوچھ رہا، ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرے اصغر بھائی کا نام بھی ہے، وہ اصغر کا نام سننا ہے، 13 سال کا بچہ ہے، مگر ایک بار جوش آیا، انگڑائی لی، قبا کے بند ٹوٹنے لگے، چچا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں آ کے اصغر کو شہید کرے گی، آقا کیسے بچائیں، بتائیں کہ قاسم اصغر خیمے میں نہیں مارا جائے گا، اصغر تیرے چچا کی گود میں ہوگا جب 3 بھال کا ہر مولا کا تیر لگے گا۔ اگلا دن آیا، فجر سے لے کے ظہر ہو گئی، ظہر سے لے کے شہدائے بنی ہاشم کی باری شروع ہو گئی، جب قاسم خیمے میں آتے ہیں، اللہ کربلا کے اس خیمے میں ایک بار پھر آپ کو لے جائے جو ام فروہ کا خیمہ، جب قاسم آتے ہیں ایک بار ام فروہ تڑپ کے کہتی ہے، بیٹا اب تک زندہ ہے؟ بیٹا اب تک تیرا لاشا نہیں آیا؟ بیٹا اب تک نہیں مارا گیا؟ یہاں تک کہ اون و محمد کے لاشے آ گئے، زینب کے لال مارے گئے، اب جو قاسم فروہ کے خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ دیکھا، ماں نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا، قاسم بیٹا میری شہزادی زینب کے لال مارے گئے اور میرا قاسم زندہ ہے، تیری ماں کو یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ قاسم نے ہاتھ جوڑے، का अम्मा, फजर से लेके अब तक हर बार चचा के पास गया, चचा मुझे मक्तल में जाने दीजिए, चचा मुझे मरने की इजाजत दीजिए, और हर मर्तबा चचा ने रोक दिया, कासिम तू मेरे भाई हसन की निशानी है, तुझे मक्तल में नहीं भेज सकता हूं, चचा से इजाजत आप दिलवा दीजिए, फिर देखिए आपका बेटा कैसा जिहाद करता। उम्मे फरवा, देखिए ये इतनी शर्म वाली खातून है कि बाद उलमा ने लिखा इन्होंने जिंदगी में कभी आका हुसैन से बराह रास्त बात भी नहीं की। एक हया, एक शर्म, खेमे में आके एक मरतबा खेमे में बैठ के रोने लगे, अरे मेरी किस्मत शहजादी जैनब के लाल मारे गए, इस कनीज का बेटा जिंदा। एक मरतबा एक बात याद आ गई, कल की मजलिस थी वसीयत, आज की मजलिस में भी एक हल्का सा इशारा वसीयत, एक बात याद आ गई, कासिम तेरे बाबा ने उस वक्त जब उनका कलेजा टुकड़े टुकड़े होके तश्त में गिर रहा था मुझे बुला के तावीज दिया था जो मैंने तेरे हाथ पे बांधा, और कहा था जब मेरा कासिम किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो तो ये तावीज खोल लेना। हमारी माएं किसे मुसीबत समझेंगी अगर उनके बेटे की जिंदगी खतरे में, फरवा किसे मुसीबत समझ रही है अगर उनके बेटे की जिंदगी महफूज है। कहा कि इससे बड़ी मुसीबत क्या, कासिम जरा वो तावीज तो खोलना, और तावीज खोला, इमाम हसन की तहरीर सामने थी, कासिम बेटा करबला के मैदान में जब मेरा हुसैन मुसीबतों में घिर जाए तो अपनी जान सबसे पहले मेरे हुसैन पे कुर्बान करना। उम्मे फरवा खुशी के मारे खिल उठी, कासिम बेटा चल मेरे साथ, हुसैन से तो आज भी बात नहीं की, जैनब कुबरा के करीब पहुंची, कहा शहजादी जैनब। अच्छा जैनब को बड़ी तमन्ना थी, भाई जैनब जितनी हुसैन से मोहब्बत करती है इतनी ही हसन से भी करती है, हसन की शहादत के बाद उम्मे फरवा बेवा, जैनब को बड़ी तमन्ना थी कभी मेरी बेवा भावज मुझसे तो कुछ मांगे। अक्सर कहती थी उम्मे फरवा सारे अरब की औरतें मेरे पास आती हैं अपनी मुरादें अपनी तमन्नाएं अपनी हाजतें लेकर, तूने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। फरवा ने कहा शहजादी जिसे बगैर मांगे सब मिल जाए आपकी बरकत से, वो मांगे तो क्या मांगे, सारी जिंदगी जैनब तड़पती रही कभी तो फरवा मुझसे कुछ कहे, आज आशूर के जोहर के बाद एक बार जैनब कुबरा को सलाम किया, शहजादी आप मलिका आलम हम आपकी कनीजें, आपके नालैन उठाना हमारे लिए फख्र की बात है, आज आज आपकी बेवा भावच सवारी बन के आई है, जिंदगी में पहली मर्तबा आपसे कुछ मांगने आई। जैनब ने खुशी के आलम में कहा फरवा मैं तो कब से 12 साल से इंतजार कर रही थी, वो दिन कब आएगा कि मेरी फरवा मुझसे कुछ मांगेगी, क्या मांगना। कहा शहजादी मेरे कासिम को मख्तल में जाके मरने की इजाजत दिलवा दी। जैनब क्या हसन मुश्तबा को भूल गई, जैनब को क्या कासिम से वो मोहब्बत नहीं, एक मर्तबा सर से पैर तक फरवा को देखा, फरवा तूने मांगा भी तो क्या मांगा, लेकिन जैनब तेरी ये ख्वाहिश कैसे पूरी करे। फरवा ने वो तावीज आगे बढ़ा दिया, शहजादी आपके भाई और मेरे आका हसन मुश्तबा की वसीयत देख लीजिए, वसीयत। जैनब ने देखा आंखों में आंसू आ गए, फिजा जरा भैया हुसैन को बुला के लाना, हुसैन बाहर से बुलवाए गए, जैनब क्या बात है। जैनब ने कहा भैया आज शायद यही जुमला कहा, आज हैदर कर्रार की बेटी तेरे दरवाजे पे एक दरखास्त लेके आई है, मेरे कासिम को मक्तल में जाके मरने की इजाजत दे दे। हुसैन ने घबरा के कहा जैनब ये तू कह रही है, हसन को याद करने वाली, हसन का मातम करने वाली, कासिम को देख के जिंदा रहने वाली, कासिम की सिफारिश कर रही। जैनब ने कहा भैया क्या करूं, उम्मे फरवा से वादा भी कर लिया और भाई हसन की वसीयत भी आ गई। हुसैन ने तावीज देखा, हसन ने मुश्तबा की वसीयत पढ़ी, एक बार आंखों में आंसू आ गए, कासिम बेटा चल अब मैं तुझे इजाजत देता हूं मख्तल में जाने लगी। फरवा ने रोक ली, का शहजादी इस तरह से नहीं, मैं अपने लाल को तैयार करके भेजना चाहती। और किस तरह तैयार किया, संदूक से इमाम हसन की आबा निकाली, इमाम हसन का अमामा निकाला। शहजादी आका हुसैन से कह दीजिए अपने हाथों से मेरे कासिम को उनके बाबा का अमामा पहना के मकतल में भेजे,
छोटा है तो क्या हुआ,
हसन मुश्तबा की नियाबत कर रहा है। और कासिम इतना कमसिन शहीद था करबला का कि घोड़े पे खुद से न बैठा। हुसैन ने गोद में लेके कासिम को घोड़े पे बिठाया, 13 साल का बच्चा, और एक मर्तबा जिहाद किया। लेकिन है तो हैदर कर्रार का पोता ना, है तो फातेह खैबर का पोता ना, कासिम का वो जिहाद देखने वाला है। सारे लश्कर यजीद, खलबली मच गई, लश्कर भागा। एक शामी पहलवान, उसके साथ बेटे एक करके आ, 13 बरस के कासिम ने सबको वासिले जहन्नम किया, आखिर में खुद उस पर हमला किया। घबरा के वो कहता है, ऐ मेरे साथियों आके मेरी मदद करो। सारा लश्कर है हमारे साथ पलटा, इतनी तेजी से 30,000 के लश्कर ने 13 बरस के कासिम पे हमला किया कि कासिम ने आवाज दी, चचा मेरी मदद को आइए, या अम्मा अदरकनी जरा मेरी मदद को आइए। यह मक्तल में लिखा, करबला के हर शहीद ने हुसैन को आवाज दी। हुसैन इतने जल्दी किसी की मदद को नहीं गए, अकबर के पास भी नहीं गए, जितनी जल्दी कासिम की मदद को पहुंचे। अरे मेरे हसन की निशानी और लाल, इतनी जल्दी हुसैन आए कि लश्कर यजीद भी नहीं सोच सकता था। इधर की फौजें उधर भागी, उधर की फौजें इधर भागी, जमीन करबला पे कासिम इस वक्त पड़ा हुआ, इधर के घोड़े उधर दौड़ रहे हैं, उधर के घोड़े इधर दौड़ रहे हैं, और इनके दरमियान 13 बरस के गुलबदन कासिम का बदान। मेरे उस्ताद ने एक रिवायत पढ़ी कि इमाम जमाना ने एक मरतबा कासिम को सलाम किया था, इमाम जमाना ने सलाम किया, मेरा सलाम करबला के उस शहीद को जिसकी दाई पसलियां टूट के बाई तरफ आ गई थी, बाई पसलियां टूट के दाई तरफ आ गई थी। कासिम इधर के घोड़े उधर, इधर के घोड़े इधर, हुसैन सराहाने पहुंचे। मेरे एक और उस्ताद मरहूम मौलाना जौहर साहब कहते, करबला की जितनी मुसीबतें, हर शहीद ने हुसैन का साथ दिया, मगर एक मुसीबत ऐसी कासिम के अलावा किसी ने चचा का साथ नहीं दिया, और वो है बदन पामाल होना। या करबला में कासिम का जिस्म पामाल हुआ, या करबला में आका हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़े, मगर वहां भी एक फर्क है। हुसैन का लाशा पामाल हुआ शहादत के बाद, कासिम जिंदा था, 13 बरस का कासिम जिंदा था। इधर के घोड़े उधर गए, उधर के घोड़े इधर आए, क्या हालत हुई होगी 13 साल के गुलबदन की। हुसैन सराहाने आए, कासिम बेटा आंखें खोल, तेरा चचा आ गया, कितना शौक है मेरे लिए मैं इस हालत में तुझे देखूं। कासिम ने आंखें खोली, अजीब जुमला का, अजीब जुमला का, बाबा मेरा सलाम लीजिए, आप आ गए मेरे पास। क्या कासिम पहचान नहीं पा रहा है ये चचा आया है, हुसैन आए हैं। कासिम ने कहा, बाबा आप मेरे सराहाने आ गए, मेरा सलाम लीजिए। उलमा इसकी वजह लिखते हैं, वो कहते हैं कि जैसे ही कासिम ने आवाज दी थी, चचा मेरी मदद को आइए, हुसैन खेमे में आए थे, हसन मुश्तबा जन्नतुल बकी से आए, ऐ मेरे लाल घबराना नहीं, तेरा बाप तेरी मदद को आ रहा है। दोनों एक साथ पहुंचे, और आखिरी जुमला, हुसैन ने कासिम का लाशा देखा, पामाल लाशा, एक बार अबा में जमा किया, बड़ी मुश्किल से कासिम के लाशे को अबा में जमा किया, अबा उतारी, जमीन करबला पे बिछाई, कासिम का बदन लाशे पे जमा किया, अबा को लेके चले, अबा एक गठरी सी बन गई। खेमे के दरवाजे पर पहुंचे, अभी तक हर शहीद हुसैन लाशा लाते हैं, खेमे में आ जाते हैं, खेमे में आ जाते हैं, आज खेमे में नहीं गए, दरवाजे पे खड़े हो गए। सैनम ने देखा बहुत देर हो गई, लाशा नहीं आया। एक बार दर खेमा पर आई, हुसैन को देखा, और देखा कि कोई लाशा हाथ में नहीं है, घबरा के कहा, भैया हुसैन मेरा कासिम कहाँ चला गया, बीबियां इंतजार कर रही हैं, हमें कासिम का मातम करना है। हुसैन ने गठरी की जानिब इशारा किया, ज़ैनब बहन मेरा कासिम इसमें है, और देखो बताना नहीं किसी को, ऐसा ना हो कि उम्मे फरवा सुन ले, माँ अपने लाल की यह हालत बर्दाश्त नहीं करेगी। और उम्मे फरवा तो ज़ैनब के पीछे ही पीछे आ रही, जैसे ही यह जुमला सुना आगे बढ़ी, जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा हुसैन से बात की, कहा, आका ये आपने क्या कह दिया, आपकी कनीज हर इम्तिहान के लिए तैयार है, जरा गठरी खोल के मुझे तो दिखाइए, मेरा लाल किस हालत में।
आए औलाद वाली माओ जरा सोचो, हुसैन ने गठरी खोली, बेवा माँ के सामने कासिम का बदन टुकड़े टुकड़े। बस आखिरी जुमला, एक मरतबा फरवा ने खेमे का रुख किया, आवाज दी, ऐ कुलसुम, ऐ लैला, ऐ रबाब, ऐ कुबरा, ऐ सकीना, जरा यहाँ आओ, मुझे मुबारकबाद दो, अल्लाह ने मेरी कुर्बानी को सबसे ज्यादा कबूल किया है। वाह कासिमा, वाह कासिमा, खुदा वंदा कासिम का वसीला इन सब की सारी मुसीबतें दूर फरमा। मातम, कासिम का मातम, वाह कासिमा, वाह कासिमा।